मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एकेडमी के 6 अक्टूबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से अपने उन 11 नौजवान साथियों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं मुकेश कुमार, आप भोपाल से हैं, दीपाली शुक्ला, आप भी भोपाल से हैं, सुमित दुबे झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, सुंदरलाल तिवारी रीवा से हैं, गणपत साहेब राव राठौड़ भंडारा महाराष्ट्र से हैं, और भंडारा महाराष्ट्र से ही अगले साथी हैं अमोग सिद्ध रावेंद्र सिद्ध हराले। यदि मैं इनके नाम में कुछ उच्चारण में कुछ गलती हो रही हो, गड़बड़ी हो रही हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जो बिल्कुल एकदम नए नाम सामने आते हैं तो उच्चारण में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। अगले दोस्त हैं अतुल तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से, शाश्वत आनंद या बुरला संबलपुर उड़ीसा से, गौरव सिंह इलाहाबाद से, डॉली शेरके उमरनराला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और मिलिंद कालबंडे आप भी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो मुकेश, दीपाली, सुमित, सुंदरलाल, गणपत, अमोघ सिद्ध, अतुल, शाश्वत, गौरव, डॉली और मिलिंद, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब क्लास शुरू होने में मात्र 19 दिन रह गए हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भोपाल का मौसम भी धीरे धीरे दिन पर दिन सुहावना होता जा रहा है। अभी फिलहाल जो मौसम है वो पंखा उसके लिए पर्याप्त है। शाम को बड़ी खूबसूरत हवा चलती है, बड़ी सुहानी हवा चलती है, ऐसे लगता है जैसे वो बालों से खिलवाड़ कर रही हो और गालों को सहला रही हो। दोस्त, वैसे भी भोपाल बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और नन्हा सा शहर है, उतना नन्हा भी आप नहीं कह सकते कि वो कोई छोटा शहर हो, लेकिन प्यारा इस मायने में जरूर है कि यहाँ एक अलग तरह की शांति का एहसास होता है, अलग तरह की सफाई का एहसास होता है। लोग बड़े सहज और सरल से हैं और जिंदगी बड़ी खुशनुमा लगती है क्योंकि यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत होते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है मित्रों कि जहाँ हमारी ये 15 दिन की क्लासेस होगी, जहां हम आमने सामने बैठकर 15 दिनों तक लगभग 90 घंटे लगातार इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वो स्थान भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और दिल भोपाल का आप कह लीजिए कि वो हृदय प्रदेश है, हृदय स्थल है, प्रदेश नहीं कहना चाहिए, वो हृदय स्थल है। हृदय स्थल इस मायने में कि पहाड़ी पर वो जगह है, ट्रैफिक का वहां कोई संकट नहीं है, मतलब आधे किलोमीटर की दूरी पर ही रेडियस पे आपको खूबसूरत पहाड़ी पे बना हुआ खूबसूरत रीजनल साइंस सेंटर मिल जाएगा। आधे किलोमीटर से ही कम दूरी पर चीफ मिनिस्टर का बंगला है, आप जहां बैठेंगे उसका उसकी जो पड़ोस की दीवार है वो आकाशवाणी भवन की दीवार है, आपके सामने ही खूबसूरत पॉलिटेक्निक कॉलेज है चौराहे पर, और जैसे ही आप चौराहा पार करेंगे आपको रविंद्र भवन जैसा सांस्कृतिक केंद्र मिल जाएगा जहां लगातार कल्चरल प्रोग्राम्स की गूंज रहती है। और मुश्किल से आधे किलोमीटर ही चलेंगे तो आपको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत भवन मिल जाएगा, जिसका जो वास्तुशिल्प जो नक्शा तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने, जिनका अभी इसी साल निधन हुआ है। और ये जो भारत भवन है ये झील के किनारे है, यानी कि आधे किलोमीटर जाने पर ही आपको झील की खूबसूरती मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा खूबसूरत नन्हा प्यारा सा शहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप सब आइए, हम सब मिलकर कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ उपयोगी करने की कोशिश करेंगे। बस मेरी अपील आप लोगों से यही है, मेरी अपेक्षा आप लोगों से यही है कि आप हम सबका पूरा सहयोग करें, पूरा मन बनाकर आएं, पूरे समर्पण भाव के साथ आएं और कोशिश करें कि किस तरीके से आप अधिक से अधिक उपयोग इस वक्त का, इस स्थान का और इस अवसर का कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्वागत के बाद अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले विषय पर। आज मैं सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो मुझे सुषमा स्वराज जी के बारे में एक बात पढ़ने को मिली। हालांकि उनके बारे में मैं और भी काफी कुछ जानता हूं, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीति में हैं और बड़ी प्रतिष्ठित और बड़ी लोकप्रिय नेता हैं। उनके जो बोलने का अंदाज है, जो भाषा का चयन है और जो तर्क हैं, वो सब आप लोग सुनते होंगे, बहुत ही प्रभावशाली है और बड़े ठोस तरीके से वे अपनी बात रखती हैं। और अभी वो सांसद भी हैं, भोपाल का बिल्कुल जो पड़ोसी जिला है विदिशा, वहां से वो सांसद हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश के विदेश मंत्री हैं, इससे पहले वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, मैंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भी सुना है। मित्रों, उनके बारे में जो एक खबर सी छपी है, गप शप का कॉलम होता है, हालांकि नाम तो उसका गप शप है लेकिन वो बेसिकली गप शप होती नहीं है, वो कहने का अंदाज कुछ अलग होता है। जो खबर है बेसिकली वो ये है कि सुषमा स्वराज जी जब यहां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रम में भोपाल आई थी, तब उन्हें बीच में कार्यक्रम के जितने दिन उनको रुकना था, बीच में उनको फिर भोपाल से दिल्ली जाना पड़ा था और फिर वो लौटकर कार्यक्रम अटेंड करने आ गई थी। ठीक इसी तरह से अभी आपको मालूम है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूएनओ की जनरल असेंबली की 70वीं वर्षगांठ थी, उसकी बैठक हुई थी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे और स्वाभाविक है कि विदेश मंत्री भी वहां थी। अचानक ही उन्हें लौटकर दिल्ली आना पड़ा और फिर वापस वो यूएनओ गई और फिर वहां उन्होंने अपनी बात रखी। और आप लोगों को यह भी मालूम है मित्रों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कश्मीर का मामला यूएनओ में उठाया था, जबकि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत ये जो कश्मीर का मामला है ये आपसी मामला है और इसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उठाया। इसका बड़ा खूबसूरत और मुंहतोड़ जवाब सुषमा स्वराज ने, हमारे विदेश मंत्री ने, वहां यूएनओ असेंबली में दिया, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की और यहां तक कि हमारे अपने प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उन्हें इसके लिए बधाई दी। मित्रों, ये एक घटना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसमें ऐसी क्या बात है कि मैं आपसे उसको लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, इसमें बात ये है आपके सोचने की कि वो कौन सा कारण था जिसके लिए सुषमा स्वराज जी को भोपाल से दिल्ली जाना पड़ा, फिर भोपाल आना पड़ा और फिर वो अमेरिका चली गई थी, अमेरिका से उनको दिल्ली आना पड़ा और फिर अमेरिका वापस जाना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि चलिए भोपाल और दिल्ली की दूरी तो मात्र 700 किलोमीटर की है, लेकिन अमेरिका की दूरी जो है वो तो दोस्तों, अगर वो डायरेक्ट फ्लाइट से भी गई होंगी तो उन्हें लगभग 16-17 घंटे लगेंगे डायरेक्ट फ्लाइट, और अगर बीच में रुकने की बात होगी तब घंटे कुछ और बढ़ जाएंगे। और आप कल्पना करके देखिए कि जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो बड़ा खुशनुमा होता है और आपको थकान नहीं होती और परेशानियां नहीं होती हैं, वो अपने तरीके से होती हैं। अब कारण सुनिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों, और इसको आप बड़ी संवेदना के साथ सुनिएगा और एक संवेदना के स्तर पर इसके बारे में सोचिएगा भी। वो ये कारण था कि जब सुषमा जी यहां भोपाल आई थी तो भी उनको पता लगा आने के बाद, या जो जिस समय भी पता लगा हो, कि उनकी पुत्री जो है उनकी तबीयत काफी खराब है, इनको वहां जाना पड़ा। इसके बाद फिर वो वापस आई और ठीक यही घटना यूएनओ में हुई। ये दैनिक भास्कर में ये खबर है मित्रों, तो मैं उसको आधार लेकर के ये बात अपनी कह रहा हूं। वहां जाने के बाद उनको पता लगा कि बेटी की तबीयत फिर से गड़बड़ हो गई है, वो लौट करके आई, उनको देखी, जो कुछ भी उन्होंने जो जरूरी समझाव किया, और इसके बाद फिर वो यूएनओ लौट गई और फिर इतने दमखम के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। मित्रों, इसके जरिए मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात वो है, आप देखिए कि सुषमा स्वराज आपको बड़े, मतलब जो सुषमा स्वराज जी ही नहीं बल्कि कह लीजिए कि जो भी व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, सफलता हासिल करते हैं और फिर प्रसिद्धि पाते हैं या इस तरह की उनको प्रशंसा मिलती है, मित्रों तो हमें वो सारी चीजें दिखाई देती हैं कि बाप रे देखो क्या सुंदर जीवन है, क्या खुशनुमा चेहरा है, कितने एक्टिव हैं, और ऐसा लगता है जैसे इनके साथ जिंदगी की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ये सब बहुत ही खुशहाल हैं, मस्त हैं और अपना काम कर रहे हैं। नो डाउट दोस्तों, ये खुशहाल हैं, मस्त हैं और अपना काम कर रहे हैं, पूरी जी जान लगाकर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो काम है वो निजी काम नहीं है, वो देश का काम है। जो भी वो करते हैं उसका देश पर प्रभाव पड़ता है, पूरा देश उसे देख रहा है, पूरी दुनिया उसे सुन रही है, और देश उनसे अपेक्षाएं भी कर रहा है। मतलब इनके जो डिसीजंस होते हैं, इन ऐसे लोगों के जो काम होते हैं, उनका सीधा सीधा प्रभाव हम जैसे नागरिकों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि जो दिमाग पर कितना दबाव रहता होगा, कितना तनाव रहता होगा जब वो अपनी बात रखते होंगे या कुछ कहते होंगे। मित्रों, ऐसे समय में अगर एक पुत्री के स्वास्थ्य की बात उसमें शामिल हो जाए, वो चिंता शामिल हो जाए, तो आप कल्पना करके देखिए कि मस्तिष्क की स्थिति क्या होगी। क्योंकि पुत्री के स्वास्थ्य के बारे में जितना चिंतित एक मां हो सकती है, स्वाभाविक है बात दोस्तों कि दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिता नहीं होता है, लेकिन एक पिता में थोड़ी सी तर्क ज्यादा होती है, लेकिन मां की तो संतान तो मां के अपना ही एक्सटेंशन होता है। चूंकि मां भावुक होती है, संतान की देखभाल करती है, पालन पोषण करती है, तो स्वाभाविक रूप से वो ज्यादा गहरे रूप में जुड़े रहती है। मैं यहां गहराई की बात कर रहा हूं। तो मित्रों, आप कल्पना करके देखिए कि यहां विश्व हिंदी सम्मेलन है, उन्हें खबर मिलती है कि बेटी की तबीयत खराब है, उनको जाना पड़ता है, और फिर आकर के वो अपने काम में उसी तरह से लग जाती हैं, और बाहर से देखने वाले और सुनने वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक यही यूएनओ में होता है, और इतनी बड़ी विश्व प्रसिद्ध संस्था में बोलना, इतने दमखम के साथ बोलना, और ऐसा बोलना कि जो बड़ा परफेक्ट रहा हो और जिसकी दुनिया तारीफ कर रही हो, वो कम बड़ी बात नहीं है, राइट फ्रेंड्स? तो अब आप केवल ये सोचिए ऐसा कैसे संभव होता है। क्योंकि जो इमोशन का जो कंटेंट होता है, जो तत्व होता है, जब हम इमोशनल होते हैं तब हमारे जो मस्तिष्क की जो स्थिति है वो थोड़ी सी डामाडोल होने लगती है। हम आप कह लीजिए कि एक प्रवाह में बहने से लगते हैं, एंड इतना कंट्रोल नहीं रह जाता। लेकिन यदि कोई इसके बावजूद उस पर इतना कंट्रोल रख रहा है, तो आप कल्पना करके देखिए कि उनका अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर कितना जबरदस्त नियंत्रण है। मित्रों, इसे ही मैं कहता हूं दिमाग की मजबूती। फ्रेंड्स, हम सब जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मान लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन समस्याओं के सामने सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं और हाथ खींच लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, और हम अपने को समझा लेते हैं, किनारे हो जाते हैं। लेकिन यहां देखिए, क्योंकि यहां किनारे होने से बात बनेगी नहीं, और याद रखिए आप ये मत कहिएगा कि चूंकि वो ऐसी जगह पर हैं तो ऐसा करना उनकी मजबूरी है। मैं इसे दूसरे रूप में देखता हूं फ्रेंड्स, और वो ये कि नहीं, वो ऐसे हैं इसलिए वो उस जगह पर हैं। ऐसा नहीं कि उस जगह पर होने के कारण उनमें ये मजबूती आ गई है, बल्कि सच ये है कि वो इतने मजबूत लोग ही हैं, इसीलिए तो वो ऐसी जगहों पर हैं। मित्रों, ये दिमाग की जो मजबूती होती है, जिसको मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं, या साइकोलॉजिकल पावर कहते हैं, या पावर ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, आप जो भी नाम इसको देना चाहें, याद रखिए कि ये बहुत अद्भुत चीज होती है, और ये कहीं बाहर से हासिल नहीं की जा सकती, ये हमें खुद एक्वायर करना पड़ता है। और एक्वायर कैसे होगा? सीधी सी बात है कि जब आप जूझेंगे, जब आप संघर्ष करेंगे, तो वो चीज मजबूत होती चली जाएगी। मित्रों, मानकर चलिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने जीवन की समस्याएं ना आती हों। सच पूछे तो जीवन समस्याओं का संग्रह ही है। अगर समस्याएं नहीं है तो जीवन पर डाउट होना चाहिए कि क्या बात है। लेकिन हम उनसे जूझते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, उनको सुलझाते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरीके से जीवन आगे बढ़ता जाता है, और सच पूछिए तो कहीं ना कहीं जीवन खुशनुमा भी होता जाता है। हम उसी को जीवन नहीं मान लेते कि साहब अब यही समस्या ही मेरा जीवन है, मेरी जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, और मेरे जो दुख है मेरी क्षमता से भी बड़ा है। नॉट एट ऑल, किसी भी व्यक्ति का दुख उसकी अपनी क्षमताओं से बड़ा नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप उसे बड़ा होने न दें, अलाउ न करें कि तुम्हारा कद मेरी कद से बड़ा हो जाएगा। नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने दिमाग की इस मजबूती पर काम करें, और आप देखेंगे कि जब आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा तो किस तरह से समस्याएं लगातार कमजोर पड़ती चली जाएंगी। और सच पूछिए तो इस मजबूत दिमाग के होने पर बहुत सी समस्याएं तो आपके सामने आएंगी ही नहीं। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट जब यहां कुछ दिनों के बाद ही 19 दिनों के बाद जब मेरे सामने आए और हम एक दूसरे को देखें, तो मुझे आप लोगों के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास, एक गजब की जिज्ञासा, एक गजब के सच पूछे तो मासूमियत और पूरे के पूरे शरीर से निकलती हुई एक गजब की ऊर्जा का एहसास हो और मुझे वो सारी बातें दिखाई दे। फिर आप देखिए कि वो जो स्थल होगा, वो कमरा होगा, वो हॉल होगा जिसमें हम सब बातें करेंगे, उसकी कितनी अधिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, कितनी अधिक चमक बढ़ जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो खुद आपका जो रिसीविंग पावर है, जो ग्रहण करने की शक्ति है, वह बढ़ चुकी होगी। मित्रों, अभी तक ऐसा होता रहा है और निश्चित रूप से आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप सब जो यहां आ रहे हैं एक मकसद से आ रहे हैं और बहुत बड़े मकसद से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर और वो है AIR न्यूज का स्टेज। आज मैं आपसे थोड़ी सी और एक अलग तरीके की बात करूंगा। मैंने थोड़ा सा अब परिवर्तन किया है मित्रों, इसकी इजाजत मैंने इससे पहले आप लोगों से ली थी कि अब मैं सीधे सीधे न्यूज की एनालिसिस पर नहीं आऊंगा, कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसकी ही चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि उस न्यूज को किस एंगल से देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, कैसे हम उस न्यूज के माध्यम से अपनी और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इन पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। कल के न्यूज में आपने सुना कि भारत एवं जर्मनी के बीच में जो समझौते हुए हैं उसकी खबर सबसे बड़ी खबर थी। नो डाउट कि इस खबर को एक बड़ी खबर बनना ही था। यही एक सरकारी मीडिया जो होता है या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग होती है कह लीजिए, या प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग में फर्क होता है, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नेशन के हिसाब से चीजों को देखता है, उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से। लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है उनके अपने आधार होते हैं। मैं प्राइवेट मीडिया की आलोचना के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूं, अपनी अपनी च्वाइस है और अपना अपना करेक्टर है। स्वाभाविक है कि सरकारी मीडिया का अपना करेक्टर होगा, होना भी चाहिए, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है, केवल भारत की ही बात नहीं है। तो उसमें आपने देखा कि जो न्यूज का एक तिहाई हिस्सा था वो भारत और जर्मनी के ऊपर था, उनके बीच में जो समझौते हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में ये विचार आता है कि अगर इतना स्थान दिया गया है इस खबर को तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, और रीजन यही है कि भारत के लिए ये खबर बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों, जो हमारी तैयारी करने का जो ढंग होता है, आपको मालूम होगा कि कल भी मैंने भारत और जर्मनी के बारे में कुछ बातें की थी। आपने देखा कि इससे पहले कि भारत और जर्मनी के आपस में समझौते हों, कुछ खबरें अखबारों में पहले से ही आ गई थी, जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स की लैंग्वेज में कर्टेन रेजर कहते हैं। कर्टेन रेजर का मतलब है कि पर्दा उठाना, क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन इश्यूज पर बात होंगी, इसके बारे में सरकार पहले से बता देती है जर्नलिस्ट को, तो वो अखबारों में आ जाते हैं, और ये हर जगह होता है। तो उसमें बहुत सी चीजें आ गई थी और उनके बारे में हम लोगों ने कल भी बातें की थी, और सच पूछे तो अगर आज हम बातें करेंगे तो हम उन्हें ही दोहराएंगे, और दोहराना कोई बुरी बात नहीं है, याद रखिए। दोहराना तो तब बुरी बात होती है जबकि हम अपने को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपने को बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हम अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तैयारी को चमक हम चीजों को रिवाइज कर करके दे सकते हैं, दोहरा दोहरा कर दे सकते हैं। और मित्रों, सच पूछिए तो रेडियो की न्यूज सुनना, फिर अखबार पढ़ना, और यदि आप उसमें जोड़ना चाहें तो इस ऑडियो को सुनना, इसकी ताकत ही यही है कि ये तीनों मिलकर एक बहुत ही आपके लिए एक शक्ति का ट्रायंगल बना देते हैं, एक चमक पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसी बात को आपने न्यूज में सुना, उसी बात को आपने फिर अखबारों में भी पढ़ा कि अखबार में क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, आपने उस पर न्यूज आइटम पढ़े, एडिटोरियल कमेंट भी पढ़े, फिर आर्टिकल्स भी पढ़े, फिर आपने ऑडियो में उसकी एनालिसिस भी सुन ली। तो होता यह है कि ऑटोमेटिक ही बिना किसी विशेष तैयारी के या बिना अतिरिक्त समय दिए हुए ही वो चीज हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में, हमारी चेतना में, या कह लीजिए हमारी समझ में एक ऑटोमेटिक तरीके से रच बस जाती है। यहां मैंने जानबूझकर रच बस जाने शब्द का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सिविल सर्विस परीक्षा का अब जो पैटर्न हो गया है, स्पेशली जनरल स्टडीज का, और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर, सटीक उत्तर दिए जाने तभी संभव है जबकि कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई ज्ञान हमारे दिमाग में रच बस जाए। क्योंकि पढ़ी हुई चीजें वहीं तक काम आएंगी जहां तक कि हम कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए चीजों की जरूरत है बस। और फिर जब चीजें रच बस जाती हैं तो बड़े एक लय के साथ वो कागज पर उतरती है। तो अब ऐसा हो कैसे? ठीक है, रच बस रच, हम भी चाहते हैं कि रचे बसे, लेकिन वो संभव कैसे है? वो संभव इसी पैटर्न से है मित्रों, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक टॉपिक को कई कई माध्यमों से पढ़ते हैं, सुनते हैं और कुछ लंबे समय तक उसके साथ हम रहते हैं तो वो रच बस जाता है। मैं मान करके चलता हूं कि हो सकता है अब आप आगे होंगे, अभी जर्मनी की आई है, फिर बाद में और कोई आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, और घटनाएं होंगी इसके बाद। ये जो जर्मनी की खबर है ये धीरे धीरे पुरानी पड़ती जाएगी, हमारे दिमाग से भी ये चीज धीरे 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 थोड़ी सी धुंधली होती जाएगी, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि दिमाग का जो मैकेनिज्म होता है उस पर आप विश्वास कीजिए और उस मैकेनिज्म में अपने आप में इतनी ताकत होती है कि परीक्षा में अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी जर्मनी के साथ भारत के इस समझौते के रेफरेंस की तो आपका दिमाग आपको प्रोवाइड कर देगा। और पता लगा कि आप बात तो इसकी कर रहे हैं कि भारत अभी अपने यहां स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो उसमें आपने अपने देश के बारे कदम तो लिख दिए कि अलग से मंत्रालय बना दिया गया है और इतना एलोकेशन किया गया है और सभी मंत्रालय अपने अपने क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, ये सब आप लिख देंगे। लेकिन पता लगा कि उसी समय आपके दिमाग में मतलब कौन देगा कि यार जर्मनी के साथ भी तो समझौता हुआ कि स्किल डेवलपमेंट पर वो हमें मदद करेगा, तो वहां आ जाएगा। आप फर्स्ट से पॉइंट आप नोट कर लिख देंगे कि भारत जर्मनी और इन देशों के साथ कौशल विकास के लिए उसने समझौता किया है और वो हमारे यहां इससे प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएंगे और इसमें धन भी लगा निवेश भी करेंगे। और मजेदार बात यह है कि ये जो एक पॉइंट आपने ऐड किया है और दूसरों से चूक हो गई है, वो इसे ऐड नहीं कर पाए हैं, यही आपको अलग से मार्क्स दिला देगा। आप दूसरों से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे और सारा खेल तो मित्रों दूसरों से थोड़ा सा ही आगे निकलने का है, ज्यादा आगे तो हम निकल नहीं सकते क्योंकि दौड़ इतनी गंभीर है और इतनी फास्ट है कि कंधे से कंधा मिलाकर के ही दौड़ हो रही है, कौन पहले उस रिबन को टच करता है केवल सेकेंड का फर्क होता है। तो इस तरीके से तैयारी करने का जो ये पैटर्न है ये आपकी मदद करता है। दूसरी बात, आपने न्यूज में यह भी सुनी कि 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, राइट? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात में उलझ जाते हैं कि यार ये जो 18 समझौते हुए तो इनके कम से कम 10-12 समझौते तो हम याद कर लें। अब इसको आप इस एंगल से देखें, नंबर एक कि क्या सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत और जर्मनी के बीच हुए समझौतों का उल्लेख कीजिए। आपके सामने अनसॉल्व पेपर है, आप देख लीजिए और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लीजिए। तो आपको लगेगा कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस तो कभी नहीं पूछे गए, अगर नहीं पूछे गए तो आपको 18 समझौते याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है? देखिए, जरूरत बिल्कुल सिंपल सा है कि जो मेजर दो तीन चीजें हैं, मेजर दो तीन चीजें कौन है, कौन सी है? आपको हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि एक तो नदी स्वच्छ करने में उसका रिकॉर्ड रहा है, उसने यूरोप की राइन नदी को क्लीन कर दिया है, हम भी अभी गंगा प्लान में स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। दूसरा, उसके पास स्किल डेवलपमेंट की बहुत गजब की क्षमता है, मतलब विश्व में माना जाता है, भारत को भी अपने यहाँ का स्किल डेवलप, अपने यहाँ के लोगों को स्किल डेवलप करना है। भारत में तो केवल 2-3% लोग ही स्किल्ड हैं, बाकी सब के सब अनस्किल्ड हैं ज्यादातर लेबर वर्ग में, जबकि फॉरेन कंट्रीज में आप देखिए तो बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं। कल मैंने आपको इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी प्रोवाइड किया, उसमें बकायदे आंकड़े दिए हुए हैं कि चीन में कितना है और जर्मनी में कितना है। मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, प्लीज आप उसको देखें, और मुझे विश्वास है कि अगर आप परफेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो आपने कहीं नोट भी कर लिया होगा। तो जर्मनी से बटने चुड़ल हम ये चाहेंगे। फिर सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी जर्मनी बहुत आगे है, तो भारत इन तीन चीजों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा नीड है। प्रधानमंत्री जी की अभी योजनाओं में क्या चल रहा है? स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो इन सब के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत है, स्वच्छता अभियान, और उसमें जर्मनी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। बस थोड़ी सी सिंपल सी आपके हमारे दिमाग में ये चीजें आ जाएं, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के उत्तर देने के लायक हम बन जाएंगे। हमको ये नहीं लगेगा कि यार इसमें क्या लिखें, और फिर ये भी नहीं होगा कि हम कुछ भी सुपरफिशियल तरीके से सतही सतही लिख करके मुक्ति पा जाएंगे, हम ठोस चीजें लिख लेंगे। लेकिन जब हम ढेर सारी चीजों में उलझते हैं ना कि 18 समझौते कौन कौन से समझौते हैं, फलाना 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 फलाना, तो पता लगता है कि जरूरत पड़ने पर हम जो मेन समझौते होने चाहिए, जो आने चाहिए थे लिखने में, वो तो गायब हो गए और हम छोटे छोटे के चक्कर में पड़ जाते हैं, और परीक्षा हॉल से निकलने के बाद अपनी पीठ भी थपथपा देते हैं कि यार हमने तो 18 होते हैं लेकिन हम तो 16 लिख करके आ गए, और हम खुश हो जाते हैं, जबकि उस भूल भुलैया में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खो जाती हैं। तो दोस्तों, मुझे इस भारत और जर्मनी के बीच हुए समझौते के माध्यम से इस पॉइंट पर बात करनी थी, और मुझे यकीन है कि आप सब इसको सुनने के बाद इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, इस पर विचार करेंगे, और अगर आपको ये ठीक लगता है तैयारी के पैटर्न के रूप में तो इसे फिर आप अपनाएंगे भी। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो मिशन इंद्रधनुष की थी, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। आपको मालूम है कि जो मिशन इंद्रधनुष है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका जो सेकेंड स्टेज है, द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है। अब एक अच्छा अवसर है कि आप थोड़ा सा मिशन इंद्रधनुष के बारे में थोड़े से बैकग्राउंड को समझ लें, और न्यूज में आपने सुना है तो उसे दिमाग में या किसी भी रूप में थोड़ा सा दोहरा भी लें। मिशन इंद्रधनुष है, किन किन चीजों से रिलेटेड है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, आपने न्यूज में ही सुनी कि पोलियो, चेचक, डिफ्थेरिया, काली खांसी, इस तरह की 7 बीमारियां हैं। 7 बीमारियों के लिए ही इसीलिए इंद्रधनुष नाम दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं। ये ऐसे टीके हैं जिस योजना का केंद्र ये है, योजना का उद्देश्य ये है कि 2 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये टीके लगाए जाएं, ताकि वो इस तरह की होने वाली 7 तरह की बीमारियों से बच सकें। ये मिशन इंद्रधनुष है। हो सकता है कि मिशन इंद्रधनुष की सफलता या मूल्यांकन के बारे में अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, या ये भी पूछ लिया जाए कि भारत सरकार खासकर लोगों को मूलभूत बीमारियों से बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है, उसमें भी ये काम आ जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो काफी कम है, हम अभी तक मिलेनियम गोल को हासिल नहीं कर पाए हैं। माता मृत्यु दर भी कम है और बच्चों की भी मृत्यु दर भी अधिक है और बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से इंद्रधनुष जैसी जो योजनाएं हैं, जो मिशन है, वो उस मृत्यु दर को कम करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो अब नॉलेज तो एक है, इसका इस्तेमाल आप कई कई तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके बारे में आपकी जो धारणा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो और जो तथ्य हैं वो आपके दिमाग में आप हो, ताकि आप उनका उपयोग कर सकें। दोस्तों, इसके बाद जो एक खबर थी वो सेंसेक्स को लेकर के थी, शेयर मार्केट को लेकर के थी। आपने देखा कि शेयर मार्केट काफी बढ़ा है, लगभग 650 पॉइंट एक दिन बढ़ा है, और उसके 2 रीजन दिए हुए हैं। पहला रीजन तो ये दिया गया था कि जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, नहीं लग रहा है कि वो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो उसमें परिवर्तन करेगा, बढ़ाएगा। और दूसरा ये था कि जो चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़े से सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। आपको मालूम है कि जब चाइना की इकोनॉमी में गिरावट के संकेत मिले तो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम होकर के गिरे थे और पूरी दुनिया चिंतित हो गई थी। अब लोगों को लग रहा है किसी वजह से कि उसमें थोड़े से सुधार मिल रहे हैं। अब आपको चाहिए, ये मित्रों, ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कि ये जो 2 रीजन है कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बढ़ाने नहीं जा रहा है अपने यहां में, तो इससे भारत का शेयर मार्केट कैसे प्रभावित होता है, उसका इससे क्या सीधा संबंध है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में पहले के ऑडियो में मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, यदि आप लोग उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे, और आपको याद करना ही चाहिए। और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में ढूंढिए। अब इस तरह के थोड़े से ना प्रैक्टिकल काम भी मैं आपको देता रहूंगा, हालांकि आप सब मेरे ऊपर नाराज हो सकते हैं कि सर आप हमारा काम बढ़ा रहे हैं, आप बता ही देते ना, लेकिन उससे दोस्तों मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में जो क्षमता पैदा होना चाहिए, जिसे मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता हूं, वो नहीं हो पाएगा। परीक्षा हॉल में तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, तो वो आपको वो अपनी क्षमता हासिल करनी है और वो इसी तरीके से हासिल हो सकेगी। और दूसरा यही कि चाइना इकोनॉमी अगर ठीक फिर से पुनर्जीवित हो रही है या उसमें सुधार आ रहा है, तो उसका फिर भारतीय शेयर बाजार से किस तरह का कैसे क्या संबंध हो सकता है, जिससे कि वो थोड़े से आशान्वित हुए हैं। ये अच्छा मौका है कि आप इनके बारे में सोच लें। मित्रों, इसके बाद जो एक आखिरी खबर थी वो नोबेल प्राइज को लेकर के थी, कि 3 लोगों को जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है, जिसमें एक चाइना के हैं, एक आयरलैंड के हैं और 2 जापान के वैज्ञानिक हैं और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो बीमारी की बड़ी मूलभूत चीजें होती है जैसे मलेरिया, चेचक, खांसी, है ना, तो इन पर दवाइयां तैयार की, इनकी खोज की है। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, खासकर डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री में, सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो इसी तरह की आम बीमारियों में होती है। हालांकि ये बीमारी सुनने में तो छोटी सी लगती है लेकिन होती बड़ी खतरनाक है क्योंकि ये बहुत लोगों को अपनी लपेट में लेती है। नोबेल प्राइज किसको मिला, क्या मिला, इस तरीके से हम लोग के समय में तो कभी कभी पूछ लिया जाता था लेकिन अब सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, इंटरव्यू बोर्ड में के सामने हैं, या आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो फिर इस पर डिटेल में भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन और अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर ये थोड़ा सा जरूरी हो ही जाता है। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पर। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के बारे में बात करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर के दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। राष्ट्रीय सहारा में खासकर नेपाल में जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और आपको इस खासकर नेपाल के संकट को लेकर के कल भी मैंने एक एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड किया, एक छोटा सा, उसके साथ इसे आप जोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दैनिक जागरण में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है काले धन से कारगर लड़ाई टाइटल से, दोस्तों ये अरुण जेटली जी का, हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। इसे आप एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मान सकते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा कही गई बातें हैं और मैं चाहूंगा कि ये आपके पास होनी ही चाहिए और इसे इसका आप सब नोट्स बना ले पॉइंट वाइज कि सरकार क्या क्या करने जा रही है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। तो मित्रों, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, एडिटोरियल कमेंट्स थे, और भी एडिटोरियल कमेंट्स हैं वो नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे, वो सब आप देख लेंगे। फ्रेंड्स, अब अंतिम चरण ईमेल का चरण है, बहुत से मेल्स आप लोगों ने लिखे हैं, मैं आभारी हूं कि आप लोग लगातार अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपनी जरूरतों से मुझे अवगत करा रहे हैं। रजत, इनमें से कुछ मित्रों के जो नाम है मैं लेना चाहूंगा। रजत हैं बोलपुर से, संतोष कुमार हैं दिल्ली से, चंदन पांडे हैं नवादा बिहार से, कैप्टन अवतार सिंह हैं बरनाला पंजाब से, पंकज शर्मा हैं जयपुर से, सारांश गुप्ता हैं पायल शर्मा हैं, मनीषा हैं पुणे से और संदीप पांडे हैं विशाखापट्टनम से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है, मैं इजाजत लेता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।